नमस्कार, मैं अर्चना सिंह आज के मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हम कॉलेज लाइफ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने मौज मस्ती बेफिक्री से भरे हुए दिन आ जाते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कब कॉलेज में पहुंचेंगे, कब वो मस्ती करेंगे, और जब हम कॉलेज पार करके प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो यही कॉलेज के दिन हमारी सबसे सुनहरी याद बन जाते हैं। आज की इस खुशनुमा शाम में हमारे साथ हैं नागपुर के विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए कुछ बड़े ही उत्साही प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स, जो अपने कुछ सवालों के साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं, और वे बड़े खुशनसीब हैं कि उनके जवाब देने के लिए बेहद अनुभवी व्यक्तित्व हमारे साथ है, पुष्पा रानी दीदी जी। पुष्पा दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ क्षेत्र की सबजोन संचालिका है। दीदी, आज हमारे साथ कॉलेज के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में जो उन्हें समस्याएं आ रही हैं उनके जवाब आपसे जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, और शुरू करें सवालों का सिलसिला। पहला सवाल हमारे सामने लेकर आ रही है ज्योत्सना बारसागड़े। ज्योत्सना, आपका सवाल।
नमस्कार दीदी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग जो रहती है उसे कैसे बढ़ाए हम?
पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात श्रेष्ठ विचार, और नेगेटिव विचार जो आते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी उन्नति के लिए बाधक है, क्योंकि जब कोई भी कार्य में हम जाते हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, पढ़ाई में भी बैठते हैं, अगर हमारे मन में नेगेटिव विचार चलते रहेंगे तो हम अभ्यास की ओर भी ध्यान नहीं दे सकते। पुस्तक हाथ में है, माता पिता समझते बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, हम भी समझते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर वास्तव में हमारा मन वहां नहीं होता। इसलिए कई बच्चों का यह कहना हो जाता है हमने बहुत मेहनत की मगर नतीजा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमारा मन उस कार्य में लगा हुआ नहीं था। अभ्यास मन ग्रहण करता है, इसलिए आप सदा ही श्रेष्ठ विचार रखें। उसके लिए जब हमारे को एक मालूम पड़ जाता है कि इस चीज से नुकसान है तो हम सावधान अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो दिशा बता के नहीं आती कि मैं कहां से आ रही हूं, किधर से भी आ सकती है, हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं, वो हम समय पर डिसीजन लेते हैं। अब नेगेटिव विचार कई प्रकार के हो सकते, कुछ पारिवारिक बाधाओं से हो सकते, कुछ मिसगाइड होने से हो सकते हैं, या कुछ हमारी अपनी कमजोरी से भी आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम मिसगाइड होने से सावधान रहे, ताकि हमारे विचार उल्टी दिशा की ओर ना चले। संग से हम सदा सावधान रहे हैं। इसके लिए भगवान ने दो कान दिए हैं, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। जब ये दोनों कान इस प्रकार से काम करेंगे तो जो आप मन से अभ्यास करेंगे वो आपके अंदर चला जाएगा, और आपके गुणवान बनने के लिए एक बहुत बहुत मददगार बन जाएगा। इसके लिए हम सदा इस बात के लिए स्वयं के ऊपर स्वयं अटेंशन दे।
मुझे लगता है कि इन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग लानी है तो सबसे पहले जो नकारात्मक बातें हम सुनते हैं उनका असर अपने ऊपर से हम खत्म करें। मुझे लगता है यही मैसेज आपने देना चाहा है। अगला सवाल पूछेंगे सोनू डोंगरे। सोनू, आप अपना सवाल पूछिए।
जब हम किसी से मिलते हैं तो उनसे बात करने के लिए मैं हिचकिचाती हूँ, तो ये बढ़ाने के लिए क्या करना होगा?
पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कि मैं जो बात कह रही हूं सही कह रही हूं। डर आपको तब लगता है जब मन में आता है मैं ठीक बात कह रही या नहीं, अगले को पसंद आएगी या नहीं, उसके पर क्या रिएक्शन होगा, मेरा बोलने का ढंग ठीक है या नहीं। कोई भी प्रकार का कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि मैं अच्छा ही बोलूंगी, अच्छा ही कार्य करूंगी। जब मुझे कोई बात गलत बोलनी नहीं है तो मुझे किस बात का डर है, जब मैं सही बात बोलूंगी तो जरूर अगले के ऊपर सही इम्प्रेशन पड़ेगा, वो मेरे लिए गलत क्यों सोचेगा। तो इसलिए एक डर को आप छोड़ें। डर तब छूटेगा जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा।
मुझे लगता है सोनू इस बात को अच्छी तरह समझ गई होंगी कि जब कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस की जरूरत। ये मत सोचे कि आपको कम्युनिकेशन करना है, सीधा कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें। उसके बारे में ज्यादा सोचेंगी तो दिक्कत होगी। अगला सवाल पूछेंगे उदय करदले।
नमस्ते दीदी, मेरा आपसे सवाल यह है कि कभी कभी मन में चिड़चिड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे वक्त हमने क्या सोचना चाहिए?
सबसे पहले हम अपने आप को देखें कि मुझे चिड़चिड़ापन किस बात पर आता है। क्या मुझे अपने माता पिता की बात कही के ऊपर आता है, या मैं पढ़ाई करना चाहता हूं मेरे को घर का काम बताया जाता है तो चिड़चिड़ापन आता है। चिड़चिड़ापन के आने के कई कारण होते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले समझो, माता पिता ने कोई कार्य कहा या परिवार के कोई भी सदस्य ने कहा, अगर उस समय बहुत आवश्यक है तो आप जरूर अपने आप को एडजस्ट करिए। उस समय जो आप काम करना चाहते हैं वो एक तरफ रख करके पहले उस कार्य को कर लें, फिर वापस लौट के अपने कार्य में लग जाए। अगर आप उस कार्य के लिए समझते हैं कि थोड़ी देर बाद भी किया जा सकता है, तो वहां नम्रता के साथ, प्यार के साथ अपने बड़ों को कहें कि हाँ मैं जरूर करूंगा, थोड़ा सा ये काम करके करूंगा, ताकि वो भी आपकी परिस्थिति को समझे। अगर आप हमेशा चिड़चिड़ेपन में कहते रहेंगे ये मेरे से नहीं होता है, मैं वो नहीं करूंगा, तो स्वभाव हमारा भी बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, और वो भी समझेंगे कि ये बच्चा हमेशा मना करता है, उनके आशीर्वाद के हम लोग पात्र नहीं हो सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बड़ों की आशीर्वाद लेनी है, क्योंकि अधिक चिड़चिड़ापन हमें जहां तक देखा गया है बाहर नहीं निकलता है, वो घर में ही निकलता है। पर घर हमारे लिए एक शांति का घर है, न कि क्रोध करने के लिए वहां खुली छुट्टी है। जब परिवार के सदस्य अपने हैं, मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूं, तो अपने ही घर को देखना, अपने घर की जवाबदारियों को समझना, आवश्यकताओं को समझना, वो मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए अपने प्यार के रिश्ते को, अपने कर्तव्य के महत्व को समझते हुए, समय के महत्व को समझते हुए, आवश्यकताओं को समझेंगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा।
मुझे लगता है कि उदय इस बात को समझ गए होंगे कि यदि चिड़चिड़ापन दूर करना है तो आपको अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आप दूसरों को समझिए, दूसरे आपको समझेंगे, और जाहिर सी बात है कि आपस में संवाद के दौरान होने वाला ये चिड़चिड़ापन, इस पे आप विजय पा सकेंगे। अगला सवाल पूछेंगे संदीप अग्रवाल।
नमस्कार दीदी, एक्चुअली एग्जाम्स में काफी देर पढ़ने के बाद कभी कभी क्या होता है कि दिमाग सैचुरेट होता है कुछ, और यानी याद होना बंद हो जाता है या कुछ और दिमाग में जाना बंद हो जाता है, तो ऐसे के लिए क्या करना चाहिए?
कुछ समय के लिए आप दूसरे कार्य में लग जाओ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है। थकावट के कारण वो अभ्यास भी नहीं होगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए या तो कार्य कर ले, या अगर दिमाग में बहुत थकावट महसूस होती है थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, और जब फ्रेश हो जाओ फिर से उठ के अभ्यास करो। तो ये करने से आपको बहुत मदद मिलेगी फ्रेश रहने के लिए।
आपने देखा ही होगा कि हर टीवी प्रोग्राम में भी इसीलिए ब्रेक लिया जाता है, तो आप भी स्टडी से थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए, तो दिमाग का जो सैचुरेशन आप फील कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, फिर से दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा, नई चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगला सवाल पूछेंगी वैष्णवी खाड़े पाटिल।
दीदी जी, जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुश्किल से मैं एक घंटा पढ़ाई कर सकती हूँ, उसके बाद पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, तो इसके लिए क्या उपाय है?
पहले माइंड को फ्रेश करो, चाहिए तो कुछ क्षणों के लिए परमात्मा को याद करो, ईश्वर को याद करो, तो आपको वो शक्ति मिल जाए। या जिस समय आप एक घंटे के बाद थक जाती हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप भी उठ करके थोड़ा कुछ कार्य को बदल दें, दूसरे कार्य में लग जाए, फ्रेश महसूस कर फिर से पढ़ने बैठ जाएं, या तो 5 मिनट के लिए बीच में फिर से मेडिटेशन करें। तो ऐसे थोड़ा अगर आप चेंज करेंगी तो आपका एक एक घंटा पढ़ना कई बार हो जाएगा, क्योंकि कभी भी एक नजर जब एक जगह पे टिक जाती है तो फिजिकली भी थकावट होती है, क्योंकि आंखों पर तो प्रेशर आता ही है, दिमाग वो चलता है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में कॉलेजेस में जो टीचर्स का लेक्चर का टाइम होता है केवल 1.25 घंटा, क्योंकि एक व्यक्ति की ग्रहण करने की शक्ति एक साथ उतनी ही होती है, फिर बाद में वो बोर होने लगता है। इसे थोड़ा अपने आप को चेंज करके भले कई सिटिंग में पढ़िए हर्जा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा ब्रेक दीजिए, ब्रेक देंगे फिर से फ्रेश हो जाएंगे। जैसे उसके लिए कभी कोई पानी बीच में पी लेता है, कभी कोई चाय पी लेता है, या कोई सोच के दो बात कर लेते हैं, कोई भी रीति से अपने को लाइट कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आंखों के ऊपर दिमाग पे प्रेशर आने से आगे का दिन आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है।
इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि वैष्णवी आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है कि आप एक घंटा लगातार पढ़ लेती हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो आधा घंटा या काफी कम समय पढ़ पाते होंगे, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि आप एक घंटा पढ़ लेती हैं, उसके बाद एक ब्रेक ले लीजिए और आप कई घंटे पढ़ सकेंगी। देखते हैं कि अगले सवाल में प्रणय भोयर क्या जानना चाहते हैं।
नमस्ते दीदी, मेरा सवाल यह है कि आपसी संबंधों में मधुरता कैसे लाई जा सकती है?
हमारे मुख में मिठास, क्यों? मुख का मिठास किसी को सुख देगा। हम कभी अपनी इस प्रकार से हम ये ना कहें क्या करूं, मेरा आवाज ही ऐसा है, आवाज आपका है, आप धीरे भी बोल सकते हैं और गुस्से में आके तेज भी बोल सकते हैं, इसलिए मिठास का गुण हो, शांति का गुण हो, उसके साथ साथ सत्यता का गुण हो। अगर हम सत्य के ऊपर चलेंगे तो अगले का विश्वास बढ़ेगा और मधुर संबंध हो जाएंगे। तीसरे समय आने पर एक दो के साथ सहयोग का हाथ बटाएं। ये नहीं, ये मेरे से नहीं होता है, पर इसके लिए कहा जाता है मनुष्य को मनुष्य की जरूरत होती है। आज अगर दूसरे को सहयोग की जरूरत है तो कल हमारे को भी पड़ सकती है। यह हर एक्शन का रिएक्शन होता है, आप सहयोग दो सहयोग लो, सुख दो सुख लो। हम चाहे हम दुख देते जाए और वो हमारा ध्यान रखते जाए, हमको सुख देते जाए, ये नहीं होगा। इसके लिए हमको पहल हमें करनी है। अगर हम सच्चाई को अपने नहीं अपनाएंगे तो भी मधुर संबंध नहीं बनेंगे। विश्वास, फिर एक मत, एक विचार, पर वो भी कौन से राइट हो। ऐसे ना हो मधुर संबंध बनाने के पीछे कई बार आप कुसंग में आ जाओ, वो आपको गलत राह बता रहा है, उसको खुश करने के लिए आप उसको कंपनी दे रहे हो। वहां ये समझिए, मैं इतनी क्षमता धारण करूं अपनी जो मैं अच्छाई पर चलूं, सच्चाई पर चलूं, तो दूसरे को भी मेरी सच्चाई और अच्छाई का रंग लगे, वो कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले, न कि मैं खुश करने के लिए मैं खुद रॉन्ग करूं। क्योंकि कभी खुश करने के लिए हम लोग व्यसनों के अधीन भी हो जाते हैं, क्योंकि ये आयु ही ऐसी है, पैर हिल जाते हैं। इसलिए वहां पर आप थोड़ा सा नियम भी बनाए रखो कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। कुछ भी हो जाए, परंतु थोड़ी देर के लिए अगर उसको बुरा लगेगा भी, बाद में आपकी बात को समझ जाएगा। सद्गुण का प्रभाव पड़ता है। तो सद्गुण भी धारण करो तो भी आपके परिवार में या सभी से मधुर संबंध जरूर बनेंगे। आज महात्माओं के आगे आपका सिर क्यों झुकता है? जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर सर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ एक तो महान कार्य किया है, आध्यात्मिकता को धारण किया है, सत्यता के मार्ग पर चले हैं, सबको सुख दे रहे हैं। इसलिए स्मृति रखो, सुखदाता परमात्मा का मैं बच्चा, मेरा काम ये सुख देना। सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो।
दीदी जी, आपने बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से ये बात समझाई है कि संबंधों में अगर मिठास लानी है तो सबसे पहले अपनी बोली में मिठास लेकर आए, लेकिन ये मिठास झूठी ना हो, ये मिठास धोखा देने वाली ना हो, ये सच्चाई पर आधारित हो। बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कही है, जो मुझे लगता है कि आज के युवा वर्ग के लिए बड़ी ही जरूरी है, और इसका वो पालन करें तो काफी सफल हो सकते हैं। आज हमारे दोस्तों के बीच अनुराग पोहेकर आए हैं, जिनके पास सवाल तो कई हैं, लेकिन हम उन्हें इजाजत देते हैं सिर्फ एक सवाल पूछने की। अनुराग, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
नमस्ते दीदी, मेरा सवाल यह था कि हम तनाव मुक्त कैसे रहे?
तनाव मुक्त के लिए आध्यात्मिकता अपनाने से वो हमारा समाप्त होता है। आध्यात्मिकता में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के एक संकल्प देता है, शक्ति भी देता है, और उसके लिए हमारे मन की भी एकाग्रता की जरूरत होती है। तनाव कब आता है? जब हम इधर और इधर की बातों को देखते हैं, किसी की कमियों को देखते हैं, किसी की कमजोरियों को देखते हैं, या मन चाहिए हमारी बात नहीं होती है, या चाहते कुछ एक हैं, करते कुछ दूसरे, तो ये सब बातें एक तनाव का कारण बनता है। आज कई मार्केट में लोग आवाज देते हैं, सब्जी लो, फलानी चीज लो, फलानी चीज लो, उनका काम है कहना। क्या उसमें आप चिड़चिड़ करते हैं? आप उसका टेंशन लेते हैं? वो समझो कह भी रहा है ये चीज लो, परंतु आप लेंगे कब? वो आपको देगा कब? जब आप अपना पैसा देंगे। तो इसी तरह से अगर कोई देने वाला दे रहा है, मैं अपना बुद्धि को उधर मत दूं ना, मैं अपने मन को ना दूं ना, जब हम अपने मन को देते हैं, बुद्धि को देते हैं, विचारों में घुसा लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो विचार चलते चलते हम तनाव में आ जाते हैं। देने वाले भले देना चाहे पर मेरे को लेना नहीं है। इसके लिए उस बात को भूलो, अवॉइड करो। बार बार सिमरण करते करते उस बात को हम बढ़ावे नहीं तो टेंशन क्यों आएगा। सदा ये रखो कि खुशी मेरा खजाना है, प्रसन्नता मेरा गुण है, मुझे सदा अपने पास रखनी है। टेंशन उस चीज का बहुत बड़ा दुश्मन है।
जब आप तनाव लेना नहीं चाहेंगे तो किसी की क्या मजाल की आपको तनाव दे दे। और मुझे लगता है कि आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, ऐसे में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो ना लेना चाहें उसे कोई आपको जबरदस्ती दे सके। मुझे लगता है आप सब मुझसे सहमत होंगे, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवयानी चांडक अपना अगला क्वेश्चन पूछेंगी।
मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके पहले बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसका जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें।
उसके लिए आप अपने परिवारजनों से सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव की शक्ति होती है, काफी आयु इस संसार में बिता चुके हैं, किसमें लाभ है किसमें हानि है वो समझ सकते हैं, जो आज हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए उनका सहयोग लें, उनसे विचार विमर्श करें, तब आप डिसीजन लें। तो बड़ों का सहयोग आपको राइट डिसीजन देने में मदद करेगा।
डिसीजन लेने में जहां कहीं अटके वहां पे अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं आप। मुझे लगता है कि आपको अपनी उलझन का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथियों में एक बड़े ही हैंडसम आए हैं, करण त्रिवेदी, सुनते हैं वो क्या सवाल जानना पूछना चाहते हैं।
किसी भी चीज का सबसे अच्छे से मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जैसे कि हम आजकल की दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोगों को दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं कुछ कार्य करने के लिए, तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए।
अपने माइंड का मैनेजमेंट करो। अगर हमारा मन भटक रहा है, हमारा मन दुविधा में है, वो सही ठिकाने पर नहीं है, तो कार्य भी कभी सही नहीं होंगे। फिर कभी उसकी फील्ड कम हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी चीज जो समय कम पड़ने की बात है, उसमें हमको अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरा समय दिन भर में कहां गया। वही कार्य एक व्यक्ति घंटे में करता है तो दूसरे व्यक्ति को 4 घंटा लगता है, 2 लगता है, क्यों लगता है। तो इसके लिए जो जल्दी करता है और उसमें अच्छा करता है, जल्दी करना माना उल्टा सीधा करना नहीं, स्पीड फास्ट हो, काम राइट हो, तो कहते ये बहुत एक्टिव व्यक्ति। और जो व्यक्ति वही काम लेके चलता रहता है, समय पास करता है, तो उसको तो 24 घंटे कम ही पड़ने वाले हैं। इसलिए एक्टिवनेस का गुण धारण करो, अपना लक्ष्य बनाओ, इतने समय में मुझे ये काम करना ही है, उसका बाद का समय दूसरे में भी देना है, तीसरे में भी देना है। और जैसा समय उसमें अपने आप को ढालना भी है। कई बार एक काम करते करते दूसरी परिस्थिति आती है तो हमको काम चेंज करना पड़ता है, तो उतना हम स्फूर्ति के साथ वो भी कर ले, तो कम समय में हमारे अधिक काम होते जाएंगे और कार्य अच्छी रीति से मैनेज भी हो जाएगा। मैनेज अच्छा, उसकी चिंता मत करिए। कई बारी वो चिंता करते करते जैसे कि कहा जाता है अटेंशन से करना, पहला टेंशन ये हो जाती कैसे अटेंशन से करूं,
अटेंशन का भी टेंशन आ जाता है, उसको मत लाए। बुद्धि को ठंडा, सरल स्वभाव, जीवन स्वभाव मिलनसार, समय में एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करके भी हल्के हो करके रहें।
काम के टेंशन में अपना समय गंवाने की जगह उस काम को करना शुरू कर दीजिए, और कई बार अपनी प्रायोरिटीज को भी चेंज कीजिए। पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, 24 घंटे आपको कम नहीं पड़ेंगे। हमें भी टाइम मैनेज करना है, लेकिन एक अंतिम सवाल फिर भी हम लेना चाहेंगे। वो सवाल पूछने वाली है मयूरी करदले।
कई बार असफलता मिलने के कारण मेरी सहेलियां आत्महत्या करने का विचार करती है, तब मैं नहीं समझ पाती कि मैं उन्हें क्या समझाऊं ताकि उनके दिमाग से ये विचार चला जाए, ताकि कभी वो ऐसा विचार न कर पाए।
कहा जाता है जीव घात माँ बाप, तो इसलिए जीव घात का संकल्प बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये परमात्मा की दीवी अमानत है, अच्छे से संभालना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। कभी अगर किसी की हार होती है तो हार सदा नहीं होगी, उस हार में से भी कुछ लेसन लेके हमको आगे के लिए जीत की ओर बढ़ना है। तो जो जीत की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखेगा उसको ये आत्मघात करने का संकल्प आ नहीं सकता।
मुझे लगता है कि ये बात समझ गई होंगी कि ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, इसको नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं है, और इसलिए आत्महत्या का विचार ही बहुत बड़ा पाप है। मुझे लगता है कि आज के हमारे सवाल कुछ बड़े ही गहरे गहरे सवाल थे। पहले तो लगा नहीं था कि ये इतनी कम उम्र के जो विद्यार्थी हमारे स्टूडियो में आए हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, लेकिन अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इनके सवालों के उत्तर भी इन्हें बहुत ही गहराई से मिले हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सवालों के दिशा देने के लिए। कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।